हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा रास्ती हरि की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तिरुभाव दिवस की जय। श्री रसिकानंद प्रभु तिरुभाव दिवस की जय। Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga. Okay, so I have been requested to speak in Hindi. So devotees who need translation from Hindi to English, you may some arrangement. Where is the arrangement? Okay. ആത്മജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുഃ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുന് വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാൻവിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഹഗണലലിത ശ്രീവിശാഖാൻവിതാംശ്ച. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ഛാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആജ് ശ്രീല ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് ഓർ ശ്രീല രസികാനന്ദ് പ്രഭു യാ രസികാനന്ദ് ദേവ് ഗോസ്വാമി ഇൻകാ തിരുഭാവ് ദിവസ് ഹെ. ഹം ഇൻ ദോ മഹാൻ ആചാര്യോ കെ ബാരേ മേ സംക്ഷേപ് മേ ചർച്ച കരേംഗെ. ജൈസ കി ആപ് സബ് ജാനതേ ഹൈ, ഹമാരെ സാരസ്വത് ബ്രഹ്മ മധ്വ ഗൗഡിയ ശിഷ്യ പരമ്പരാ മേ, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരാ മേ ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് കാ സ്ഥാന ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ കെ പെഹലേ ആതാ ഹൈ. പ്രഭുപാദ് ജി കെ ഗുരു ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, ഉൻകെ ഗുരു ശ്രീല ഗൌര കിശോർ ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ്, ഉൻകെ ശിക്ഷാ ഗുരു ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ, ഓർ ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ കെ ശിക്ഷാ ഗുരു ഓർ ബാബാജി ദീക്ഷാ ദേനേ വാലേ ശ്രീല ജഗന്നാഥ് ദാസ് ബാബാജി മഹാരാജ് തെ. ഉൻകാ ജനം 1780 മേ ബംഗാൾ മേ ഹുവാ ഥാ. ആജ് വോ സ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് മേ ഹൈ, തംഗൈൽ ജില്ലേ മേ, ഓർ ഏക് ബഹുത് ധനി പരിവാർ മേ ഉൻകാ ജനം ഹുവാ. फिर भी छोटी आयु से ही भगवान के प्रति ज्यादा आकर्षण उनका था और विरक्त जीवन बिताने की इच्छा से वो घर छोड़ गए और वृंदावन और नवद्वीप इन दोनों स्थानों में रह गए. अनेक वर्षों तक उन्होंने वहां बाबा जी जीवन बिताया. उनके गुरु परंपरा इस प्रकार से है, बलदेव विद्याभूषण जो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य या शिक्षा शिष्य हैं, उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था उद्धव दास. उद्धव दास जी का के एक शिष्य थे जिनका नाम भी उद्धव दास था और ये दूसरे उद्धव दास के एक शिष्य थे मधुसूदन दास, जो बाद में सूर्यकुंड के मधुसूदन दास बाबा जी के नाम से विख्यात हुए. और उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बाबा जी दीक्षा या परमहंस वेश पहनाया या दिया. तो ये बाबा जी वेश या परमहंस वेश क्या है? वैसे चैतन्य महाप्रभु ने तो संन्यास लिया था, परंतु उनके बाद में उनके जो प्रमुख शिष्य थे षड गोस्वामी, उन्होंने संन्यास दीक्षा नहीं ली, वृंदावन में रह के बाबा जी वेश में वो निवास करते थे. बाबा जी वेश में गैरवे वस्त्र नहीं पहनते हैं, एक अंग वस्त्र रहता है, एक कौपिन रहता है और बहुत ही विरक्त जीवन बिताया जाता है और अधिक से अधिक समय कृष्ण भजन में बिताया जाता है। बहुत कड़ी तपस्या होती है और दिन रात कृष्ण भजन में ऐसे षड गोस्वामी जैसे बाबा जी मग्न रहते थे। और क्योंकि ये परमहंस अवस्था में थे इसलिए इस बाबा जी वेश को परमहंस वेश भी कहते हैं। तो षड गोस्वामी और उनके साथ जो और गोस्वामी थे जैसे लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये सब बाबा जी की तरह है ब्रज भूमि में रहा करते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी ने भी ऐसी दीक्षा स्वीकार की। उनकी तपस्या, उनका वैराग्य, उनका भजन इतना तीव्र था कि शीघ्र ही सारे बाबा जी वैष्णव समाज में उनको बहुत सम्मान मिला और सारे बाबा जी वैष्णवों के वो प्रमुख माने गए। आगे चल के श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको एक नाम दिया, वैष्णव सार्वभौम, वैष्णवों में से सर्वश्रेष्ठ जगन्नाथ दास बाबा जी। तो कभी कभी जब वो भजन करते, तीन दिन तीन रात लगातार अपने जप और कीर्तन में लगे रहते और खाना पीना सोना सब भूल जाते, ऐसे उनकी तपस्या थी, ऐसा उनका भजन था। और बड़े तीव्रता से एकांत में रह के, किसी एक स्थान में रह के वो ऐसे अपनी भक्ति किया करते थे। थोड़े साल वृंदावन में रहने के बाद फिर वो नवद्वीप में चले आए। नवद्वीप में आने के बाद वहां भी एक छोटी सी कुटिया बनाई उन्होंने और उसमें एक सेवक के साथ रहने लगे और ऐसी ही तपस्या उनकी चलती रही। ऐसे पूरे 100 साल बीत गए। 1880 में पहली बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनका दर्शन किया, उनके साथ बातचीत की। उस समय गौर किशोर दास बाबा जी, क्षमा चाहते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी 100 साल के थे और उस समय भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उपस्थित थे। जब जगन्नाथ दास बाबा जी को पता चला कि ये बिमला प्रसाद जो है भक्ति विनोद ठाकुर के केदारनाथ दत्त के पुत्र हैं, ये बहुत बड़े ज्योतिष हैं, तो उन्होंने बिमला प्रसाद से कहा कि तुम एक वैष्णव पंजिका बनाओ ताकि वैष्णव समाज में ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक वैष्णव पंजिका बनाई, क्योंकि ये वैष्णवों के लिए महत्वपूर्ण है, एकादशी कौन से दिन पे है, पारण का समय कौन सा है, कौन सा उत्सव किस दिन पे है, ये सब वैष्णवों के लिए जानना तो आवश्यक है। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के आदेश पर श्रील भक्ति सिद्धांत ने, जो उस समय बहुत तरुण थे, उन्होंने ये वैष्णव पंजिका बनाई। जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में ऐसे बताया जाता है, उनका प्रणाम मंत्र ही गौराविर्भाव भूमिस्तम निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। वैष्णव सार्वभौम, वैष्णव समाज में सर्वश्रेष्ठ थे ये जगन्नाथ दास बाबा जी। और गौर आविर्भाव भूमेः त्वम्, उन्होंने श्री गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के स्थान को ढूंढ निकाला। वैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर को एक दर्शन हुआ था जब वो गंगा के उस तट पे थे और उन्होंने एक बार एक विचित्र उजाला या एक रोशनी वहां पे देखी और उन्होंने अनुमान लगाया कि यही वो स्थान होगा जहां चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। लेकिन वो जगन्नाथ दास बाबा जी के द्वारा इस बात की पुष्टि कराना चाहते थे। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय 110 या 115 वर्ष की आयु के थे और वो चल नहीं सकते थे। उनके एक सेवक थे जो ब्रजवासी थे, बिहारी दास बाबा जी, जो शरीर से बहुत हृष्ट पुष्ट थे, तो एक टोकरी में जगन्नाथ दास बाबा जी को बिठाया जाता था और सर पर रख के फिर वो उठाकर ले जाते थे। पूरी तरह से झुक गए थे, उनका शरीर झुका हुआ था क्योंकि आयु बहुत हो गई थी, बहुत कमजोर थे और उनकी आंखें खुलती नहीं थी। खोलना पड़ता तो उंगली से ऐसे ऊंचा करना पड़ता देखने के लिए, इतना बुढ़ापा उनको हो गया था। तो ऐसी अवस्था में जब बिहारी दास उनको ले आए उसी स्थान में, तो आध्यात्मिक प्रेरणा में इतने भाव विभोर हो गए जगन्नाथ दास बाबा जी कि टोकरी में से कूद पड़े आसमान में और निताय गौर हरि बोल कह के उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर के अनुमान को सही ठहराया और कहा कि यही वो स्थान है जहां पे गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था। तो जगन्नाथ दास बाबा जी का इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उनके निर्देशन में ही फिर सारे निर्णय लिए गए वहां पर कि कौन से विग्रह वहां लाए जाएंगे और किस तरह से उनकी उपासना होगी वहां पे। और भक्ति विनोद ठाकुर वहां थे और अनेक गांव के वैष्णव वहां इकट्ठे थे, तो बहुत हर्ष और उल्लास का दिन था। इसके बाद वहां पे पूजा अर्चा सेवा आदि चालू हो गई और उसके बाद कई साल बाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहां मठ भी बना लिया, तो गौड़ी मठ का मंदिर आज वहां योग पीठ में है। अवश्य आप सब वहां गए होंगे। इसके पहले जैसे हम कह चुके थे कि पहली बार भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी को मिले थे 1880 साल में, उसके 11 साल बाद वो दोबारा उनको मिले थे और इस समय एकादशी की तिथि थी। रात भर जागरण किया दोनों ने, जैसे कि एकादशी में करने का नियम है, और कृष्ण कथा करते रहे और सुबह को सारे गांव के लोग इकट्ठे हुए और एक नगर संकीर्तन हुआ और इतना धुआंधार कीर्तन हुआ कि जगन्नाथ दास बाबा जी हालांकि इस समय 111 साल के थे, एक शेर की तरह सिंह की तरह वो भी नृत्य करने लगे और प्रेमावेश के लक्षण उनके अंदर देख के जितने भी वहां और भक्त थे जो कीर्तन में शामिल हुए थे उनके भी रोमांच खड़े हो गए, उनके भी आंखों से आंसू बहने लगे प्रेम के। इस तरह से वो वातावरण इतना अद्भुत था कि इसका विवरण ठीक से नहीं किया जा सकता। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने इस सारे घटना का वर्णन किया है अपने सज्जन तोषणी पत्रिका में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर में इन लेखों में, इस लेख में और अन्य लेखों में भी जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का बहुत गुणगान किया है, उनकी बहुत प्रशंसा की है। जगन्नाथ दास बाबा जी एक ऐसे बाबा जी थे जो किसी कपटी व्यक्ति को सहन नहीं करते थे और उस समय ही ऐसे एक प्रथा शुरू हो गई कि कई ऐसे लोग थे जो योग्य नहीं थे, जो परमहंस नहीं थे, फिर भी बाबा जी का वेश पहनते थे लोगों से एक सम्मान प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ऐसे लोगों के बहुत विरुद्ध थे, जैसे कि गौरकिशोर दास बाबा जी भी इसी प्रकार से थे, क्योंकि वह देखते थे कि ये तो धोखेबाजी है। एक बार ऐसे हुआ कि जगन्नाथ दास बाबा जी अपना प्रसाद ले रहे थे, बहुत थोड़ा ही लेते थे अपने थाली में, बिहारी दास ने उनको थाली बना के दी। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जो है वो पास में आके उन्हीं के थाली से चाट के ले रहा है और उस सेवक ने देखा कि अरे ये क्या है, तो कुत्ते को हटा दिया, भगा दिया। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा कि नहीं, उसको बुलाओ, जब वो नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगा। दूसरी बार ऐसे छोटे छोटे कुत्ते आए थे, कुत्ते कुत्तों के बच्चे आए थे, और वो जब आए वो भी खाने लगे, तो सेवक हैरान हो गया देखकर, उनको भी भगाने लगा। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने उनको मना किया, ये धाम के कुत्ते हैं, और इसलिए जोर से वो जय जयकार करने लगे धाम के कुत्तों के, कि ये साधारण जीव नहीं है, उनको धाम में जन्म मिला है। तो उनकी दृष्टि कुछ निराली ही थी जगन्नाथ दास बाबा जी की। एक बार उन्होंने सेवक से पूछा, दक्षिणा हमें मिलता है तो अभी दक्षिणा कितना है हमारे पास, देखो तो निकालो, जितने भी पैसे दक्षिणा में मिले हैं वो मुझे दे दो। तो सेवक को चिंता हो गई कि जगन्नाथ दास बाबा जी के सेवा के लिए थोड़ा पैसा रखना आवश्यक है, ताकि उनके लिए कभी प्रसाद ले लें, कभी कुछ और कर लें, और यदि बाबा जी कुछ सारे खर्च कर दें किसी चीज में तो फिर आगे थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए उन्होंने, सेवक ने 12 रुपए वापस रख लिए, गलत काम के लिए नहीं, बाबा जी के सेवा के लिए ही, और बाकी पैसे दे दिए। यद्यपि उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी ठीक से देख भी नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने कहा कुछ पैसे रखे है ना, दे दो। फिर सेवक हंसने लगा, उसने दे दिए पैसे, पूरे 200 रुपए हो गए। उस जमाने में 200 रुपए काफी बड़ी रकम थी ना। तो फिर उन्होंने 200 रुपए वापस सेवक को दिया और कहा कि जाओ रसगुल्ले खरीदो बहुत बड़ी संख्या में, और जितने भी गाय हैं यहां धाम में उन गायों को रसगुल्ले खिलाओ। ये धाम के गाय हैं, गाय हैं और उसके ऊपर धाम के गाय हैं। तो ऐसे थे जगन्नाथ दास बाबा जी। जब वो वृंदावन में रहा करते थे अन्य बाबाजियों के साथ में, तो एक ऐसे व्यक्ति आए जो श्रीमद् भागवत में बहुत बड़े विद्वान थे, और जब वो श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन करते थे तो बहुत प्रभावशाली हुआ करता था उनका प्रवचन, कई लोग आकर्षित होते थे। परंतु उनमें दोष ये था कि वो अपने जीविका के लिए ऐसे भागवत का प्रवचन करते थे, तो जगन्नाथ दास बाबा जी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि श्रीमद् भागवत को एक व्यवसाय का साधन नहीं बनाना चाहिए, ये तो हमारे लिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए एक साधन है, कृष्ण से अभिन्न है, तो इसका व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी और अन्य जो भी बाबा जी वैष्णव थे वहां पर, वो इस विद्वान प्रवक्ता के प्रवचनों में कभी नहीं जाते थे। तो ये विद्वान सोचने लगा कि ये लोग मेरे पास क्यों नहीं आते सुनने के लिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं मेरे प्रवचन सुनते हैं, ये लोग केवल नहीं आते हैं, इसका क्या कारण है। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी ने समझाया उनको कि बात यह है कि श्रीमद् भागवत का तुम जो व्यवसाय बना रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ऐसे श्रीमद् भागवत का असर तुम्हारे हृदय पर नहीं होगा, बल्कि ये अपराध होगा श्रीमद् भागवत के प्रति। तो ऐसे अच्छी तरह से समझाने के बाद उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया, और बड़ी नम्रता से उसने जगन्नाथ दास बाबा जी का शरण स्वीकार कर लिया, और वो भी उन्हीं के तरह एक भक्त बन गया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का तिरुभाव उनके तिरुभाव के समय उनकी आयु करीब 120 से 125 साल की थी, इतने वृद्ध हो गए थे उस समय। और जब तिरुभाव हुआ तो उनका शरीर और भी झुक गया था, लेकिन फिर भी जब कीर्तन होता था तो कूद के शरीर को पूरा सीधा बनाते थे। वैसे उनकी ऊंचाई जो है लंबाई वो 6 फुट लंबे थे, लेकिन झुक गए थे बुढ़ापे के कारण, लेकिन भाव विभोर होकर कीर्तन के समय वो सीधे हो जाते थे और नृत्य करने लग जाते थे। तो ये है आध्यात्मिक शक्ति तो 120-125 साल की आयु पर इसी तिथि पर उनका तिरुभाव हुआ, कृष्ण लीला में वो प्रविष्ट हो गए। श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की जय। श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को न केवल शिक्षा दी बल्कि उनको बाबाजी वेश भी पहनाया। भक्ति विनोद ठाकुर में अपने बुढ़ापे में जगन्नाथ दास बाबाजी से बाबाजी दीक्षा ली। जब पूरी तरह से अपने सरकारी काम से पूर्ण हो गया था उनका, तो उस समय उन्होंने जगन्नाथपुरी में भजन करना शुरू कर दिया। तो यह है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में दो बातें। आज श्री रसिकानंद देव गोस्वामी इनका भी तिरुभाव दिवस है। ये श्यामानंद प्रभु के प्रमुख शिष्य थे। ऐसे बताया जाता है कि श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु के कारण उड़ीसा में विशेष करके श्री गौरांग महाप्रभु के भक्ति के आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार हुआ। और उड़ीसा में जो ये महाप्रभु की संस्कृति है आज जो विद्यमान है, उसका श्रेय चैतन्य महाप्रभु के बाद इन दोनों को जाता है और विशेष करके रसिकानंद प्रभु को। उनका जन्म भी एक बहुत धनी परिवार में हुआ था और 1590 में उनके पिता एक बहुत बड़े धनी जमींदार थे। उनका नाम था राजा श्री अच्युत देव और कई सालों तक उनको पुत्र नहीं हुआ था। राजा अच्युत देव को अनेक सालों के बाद पुत्र हुआ तो बड़े प्रसन्न थे वो। उन्होंने उनका नाम रख दिया रसिकानंद या रसिक। दूसरा नाम उनका था मुरारी, इसलिए रसिकानंद को कभी कभी रसिक मुरारी भी कहा करते थे। तो बहुत सुंदर बच्चा था और बहुत बुद्धिमान भी था। शीघ्र ही सब कुछ सीख गया और जैसे कि उस समय प्रथा थी, लड़कों को भी लड़कियों को भी दोनों को जल्दी विवाह करा देते थे। तो कम आयु में रसिकानंद प्रभु का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम था श्यामादासी, वो भी भक्त थी कृष्ण की। अब जैसे समय बीतते रह गया, रसिकानंद प्रभु को अपने हृदय में बहुत तीव्र इच्छा होने लगी एक सद्गुरु के शरण ग्रहण करने की। वो सोचते थे कि कब वो दिन आएगा जब मुझे एक सद्गुरु प्राप्त हो जाएंगे और मैं कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाऊंगा। ऐसे एक दिन अचानक एक आकाशवाणी, एक वाणी आई। उन्होंने कहा कि रसिकानंद, तुम चिंता नहीं करना, बहुत ही शीघ्र तुम्हें सद्गुरु मिल जाएंगे और उनका नाम होगा श्यामानंद प्रभु। तो जब ये नाम ये सुना तो रसिकानंद प्रभु को बड़ी प्रसन्नता हुई और दिन रात फिर जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वो प्राय उसी प्रकार से श्यामानंद का नाम बोलने लगे बार बार बार। और फिर उस रात को श्यामानंद प्रभु स्वयं उनके सपने में आए। रसिकानंद प्रभु ने अपने सपने में देखा एक बहुत सुंदर रूप श्यामानंद प्रभु का, बहुत प्रकाशमान, कृष्ण भक्ति के कारण तेजस्वी। और बड़े मीठे स्वरों में श्यामानंद ने कहा कि मैं कल सुबह आऊंगा, मुझे रास्ते में मिल लेना। तो रसिकानंद प्रभु के आनंद की सीमा नहीं रही। अगले दिन सुबह वो जिस रास्ते पे श्यामानंद प्रभु ने कहा था कि मैं आऊंगा उसी रास्ते पे गए और थोड़े दूर पर उन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी वैष्णव आ रहे हैं और बड़े आनंद से अपने जपमाला में कृष्ण नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, प्रेमावेश में है। तो उन्होंने समझ लिया कि यही है श्यामानंद प्रभु। तो पूर्ण दंडवत प्रणाम किया और जैसा उचित है वैसे स्वागत किया उनको और अपने घर में बुलाया। घर में बुला के उनकी आरती उतारी और उसी समय वास्तव में श्यामानंद प्रभु ने रसिकानंद देव और उनकी पत्नी श्यामा दासी को दीक्षा दे दी। और रसिकानंद देव अभी श्यामानंद प्रभु के साथ में हमेशा रहे। जहां भी श्यामानंद प्रभु भ्रमण करते थे प्रचार के लिए, तो रसिकानंद प्रभु भी उनके साथ साथ में जाते थे, उनके चरण कमलों से दूर नहीं रहे कभी। यद्यपि वो गृहस्थ थे, लेकिन अपनी जमींदारी में कोई रुचि नहीं थी, वो केवल श्यामानंद प्रभु के साथ रहना पसंद करते थे। श्यामानंद प्रभु उनको ले गए गोपीचंद वल्लभपुर, जहां राधा गोविंद की मूर्तियां थीं। उन्होंने राधा गोविंद देव की सेवा का दायित्व रसिकानंद प्रभु को सौंप दिया। रसिकानंद प्रभु ने बड़े भक्ति भाव से इन विग्रहों की सेवा की, और ऐसे कई साल बीत गए। बाद में श्यामानंद प्रभु के होते हुए भी रसिकानंद प्रभु उनके आदेश के अनुसार खूब प्रचार करने लगे। रसिकानंद प्रभु के कीर्तन बहुत ही मधुर हुआ करते थे और उनका प्रचार बहुत जोरदार हुआ करता था। बड़े विद्वान तो थे ही, साथ साथ उनके प्रवचन इतने प्रभावशाली थे और उनकी शुद्धता इतनी तीव्र थी कि तरह तरह के नास्तिक लोग भी कृष्ण भक्त बन गए। थोड़े बहुत जितने आसपास के राजा थे वो भी उनके शिष्य बन गए, वो भक्त बन गए। अनेक ऐसे नास्तिक थे, उनका भी परिवर्तन हुआ। कई ऐसे मुसलमान व्यक्ति भी थे, यवन थे, उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया। और इंसानों की बात तो दूर है, एक बहुत प्रसिद्ध घटना है रसिकानंद प्रभु के बारे में जो बताया जाता है कि उन्होंने एक हाथी को भी एक बार दीक्षा दे दी। और ये कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि जिस स्थान में रसिकानंद प्रभु रहा करते थे, वहां एक यवन या मुसलमान राजा था जिसका नाम था अहमद बेग। और ये थोड़ा दुष्ट प्रकार का आदमी था, तो उसको पता था कि रसिकानंद देव को लोग बहुत मानते हैं, प्राय भगवान तुल्य ऐसा मानते थे लोग। तो वहां हुआ कि उनके राज में एक जगह एक पागल हाथी आया करता था, और जब भी वो आता था तो तहस नहस करके छोड़ देता था, घरों को तोड़ देता था, बगीचों को नष्ट कर देता था, खेती को नष्ट करता था, कई बार गायों को, घोड़ों को, इंसानों को भी मार डालता था। तो बड़ा भयानक था। तो एक बार जब वो पागल हाथी आया तो एक सभा बुलाई राजा अहमद बेग ने, और जो उनके आसपास जमींदार थे, छोटे राजा थे, उनको बुलाया कि अब क्या किया जाए ये पागल हाथी के बारे में, इसने तो हमारे राज्य में उत्पात पैदा कर दिया है। तो बातों बातों में उस अहमद बेग ने कहा कि तुम्हारे जो आपके जो रसिक मुरारी हैं, उनको क्यों नहीं बुलाते आप, उनको बुलाओ और बोलो कि वो इस हाथी को रोके, उसको हरिनाम दीक्षा दे दे, उसको भक्त बनाए, ये सब उत्पात तो कम से कम ये हाथी बंद कर देगा, तब मैं मानूंगा कि ये बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, बहुत विशेष व्यक्ति है, नारायण तुल्य है ये प्राय। तो जो दूसरे राजा थे उनको रसिकानंद प्रभु के प्रति बहुत श्रद्धा थी, तो जिस भावना से इस सुल्तान ने ऐसे बात कही थी उनको अच्छा नहीं लगा। फिर भी सुल्तान का आदेश था तो रसिकानंद ने बात सुन ली। तो रसिकानंद ने कहा कि लगता है ये कृष्ण की इच्छा है। तो वो चले आए, और यद्यपि उनके शिष्यों ने, उनके साथियों ने बहुत उनको रोकने का प्रयास किया कि अब राजा के पास भी मत जाइए, पागल हाथी की बात तो दूर है, लेकिन फिर भी वो गए। राजा ने दोबारा यही कहा, क्या कुछ हाथी को दीक्षा दे सकते हो? तो उन्होंने कहा, कृष्ण चाहते हैं तो कुछ भी हो सकता है। और जिस समय वो हाथी के सामने आए, वो हाथी तो उन्मत्त अवस्था में बहुत कुछ नष्ट कर रहा था, लोग इधर उधर भागे जा रहे थे। रसिकानंद प्रभु को जैसे ही उस हाथी ने देखा, तो रसिकानंद प्रभु के सुंदर रूप को अपने मन में स्वीकार किया और वहां सामने आके खड़े हो गए। फिर रसिकानंद प्रभु ने प्रचार करना शुरू किया उस हाथी को कि देखो तुम ऐसे दुष्ट नहीं बनना, ऐसे गायों को मारना, घोड़ों को मारना, इंसानों को मारना, सब जगह तहस नहस इस प्रकार से कर देना, इससे तुम्हारे क्या लाभ होगा, दुर्गति होगी तुम्हारी। तुम्हें पता है इंद्र का जो हाथी है ऐरावत, उसके मन में घमंड आ गया और फिर उसको कितनी परेशानी हुई। तो तुम भी कृष्ण नाम ले लो, कृष्ण भी तुम्हारे पिता हैं, माता हैं, धन हैं, सब कुछ है, तो तुम भी कृष्ण भक्ति करो, अपना जीवन सफल बनाओ। ऐसे रसिकानंद प्रभु ने प्रवचन दिया और वो हाथी इतना प्रभावित हो गया कि वो झुक गया, प्रणाम किया उसने रसिकानंद प्रभु के सामने। और ये सारी चीजें वो सुल्तान देख रहा था दूर से। जैसे वो पागल हाथी आ रहा था रसिकानंद प्रभु के सामने तो राजा को डर लगा, पश्चाताप हो गया कि अरे रे मैंने क्या किया, मैंने गलती कर ली, अब ये रसिक मुरारी के जान खतरे में है और उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हो जाऊंगा। लेकिन जब राजा ने देखा कि अभी हाथी झुक गया है तो राजा समझ गया कि ये व्यक्ति बहुत विशेष है। और फिर जब हाथी झुक गया तो रसिकानंद प्रभु ने हाथी के कान में जाके मंत्र कह दिया, हरे कृष्ण महामंत्र भी कहा और दीक्षा का मंत्र करके दीक्षित कर दिया हाथी को और कहा कि आज से तुम्हारा नाम श्री गोपाल दास है। तो हाथी ने स्वीकार किया, हाथी भी महामंत्र बोलने लगा, हाथी ने अपने आभार व्यक्त किया, पूरा प्रणाम किया, जो हाथी शरीर में जो प्रणाम होता है उस प्रकार का प्रणाम किया रसिकानंद प्रभु के चरणों में और काफी समय तक वहां रहा। अपने गुरुदेव का संग छोड़ना नहीं चाहता थे वो, लेकिन फिर हाथी का स्थान तो गांव में नहीं है, हाथी का स्थान जंगल में है, तो बड़े भारी हृदय से रसिकानंद प्रभु को छोड़कर वो श्री गोपाल दास वापस जंगल में चले गए और उसके बाद कभी कोई कष्ट नहीं हुआ किसी को भी। तो वो सुल्तान जल्दी से भाग के आया और रसिकानंद प्रभु के चरणों में बहुत क्षमा याचना करने लगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा अपराध हुआ, आज हम समझ गए हैं कि आप कितने महान हैं। रसिकानंद प्रभु महान वैष्णव होने के कारण बड़े आसानी से उन्होंने क्षमा कर दिया उस सुल्तान को। ऐसे थोड़ा समय बीत गया। उधर रेमुना में प्राचीन मंदिर था, गोपीनाथ जी का मंदिर, जो आगे माधवेंद्रपुरी के बाद में खीर चोरा गोपीनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समय केवल गोपीनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता था, लेकिन मुसलमानों ने मंदिर तोड़ दिया था तो रसिकानंद प्रभु ने वहां आके मंदिर का पुनः निर्माण किया और वहां पे वो रहते थे। और एक दिन ये करीब करीब 1562 की बात है, 1662 की बात है कि उन्होंने अपने शिष्यों को और भक्तों को बुलाया और वो खूब कीर्तन करने लगे गोपीनाथ जी के मंदिर के आंगन में। और फिर गोपीनाथ जी के चरणों में गए और वहां जाके उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। तो रसिकानंद प्रभु का तिरोभाव इस तिथि पर हुआ था रेमुना में गोपीनाथ जी के चरणों में, और उनकी समाधि गोपीनाथ मंदिर के आंगन में ही है, जैसे माधवेंद्रपुरी की भी है और अन्य उनके पार्षद हैं उनके भी है। तो रसिकानंद प्रभु बहुत बड़े प्रचारक थे उड़ीसा में, शुद्ध भक्त श्यामानंद प्रभु के प्रमुख शिष्य थे। श्री रसिकानंद प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रवचन हो गया है।